चैतन्य चरिता अमृत आदि लीला अध्याय 10 चैतन्य वृक्ष के कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं। मैं भ्रमरों के समान उन भक्तों के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधु का निरंतर आस्वादन करते हैं। यदि कुत्ते जैसा अभक्त भी किसी प्रकार ऐसे भक्तों की शरण में पहुंच जाता है तो उसे भी कमल के फूल की सुगंध का आनंद प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री वास समेत चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। माली तथा वृक्ष के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन अकल्पनीय है। अब इस वृक्ष की शाखाओं के विषय में ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक पार्षद थे किंतु इनमें से किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के सारे महापुरुषों की गणना इन भक्तों में होती है किंतु इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा इसका अंतर नहीं हो सकता। मैं उन सबको आदर स्वरूप नमस्कार करता हूँ। मेरी उनसे विनती है कि वे मेरे अपराधों पर ध्यान न दें। मैं भगवत प्रेम के शाश्वत वृक्ष रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस वृक्ष की समस्त शाखाओं रूपी महाप्रभु के उन भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो कृष्ण प्रेम रूपी फल का वितरण करते हैं। श्रीवास पंडित तथा श्री राम पंडित इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित हैं। उनके अन्य दो भाइयों के नाम श्रीपति तथा श्री निधि थे। उन चारों भाइयों उनके नौकरों तथा नौकरानियों को एक बृहद शाखा माना जाता है। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उप शाखाओं की कोई गिनती नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही श्री वास पंडित के घर में संकीर्तन किया करते थे। ये चारों भाई तथा उनके पारिवारिक सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे अन्य किसी देवता या देवी को नहीं जानते थे। आचार्य रत्न एक अन्य बड़ी शाखा थे और उनके पार्षद उप शाखाएं थे। आचार्य रत्न को श्री चंद्रशेखर आचार्य भी कहते थे। उनके घर में एक नाटक में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अभिनय किया था। तृतीय बड़ी शाखा पुंडरीक विद्या निधि थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे कि कभी कभी उनकी अनुपस्थिति में महाप्रभु स्वयं रो पड़ते थे। चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की हालदिनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनके शिष्य तथा प्रशिष्य उनकी उप शाखाएं हैं। उन सब का वर्णन कर पाना कठिन होगा। वृक्ष की पांचवी शाखा वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। वे 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते थे। जब वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे तब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाना गाया। फलतः वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और इस प्रकार बोले, हे चंद्रमुख, कृपया मुझे आप 10,000 गंधर्व दें। जब मैं नाचूं और वे गाएं तब मैं परम प्रसन्न होऊंगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है, किंतु यदि मेरे पास दूसरा पंख होता तो मैं निश्चय ही आकाश में उड़ता। चैतन्य महाप्रभु की 6ठी शाखा पंडित जगदानंद से, जो महाप्रभु के प्राण स्वरूप माने जाते थे, वे सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक के अवतार माने जाते हैं। जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार के रूप में सदैव चैतन्य महाप्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखते थे, किंतु सन्यासी होने के कारण महाप्रभु उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी वे दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हुए प्रतीत होते थे, किंतु ये झगड़े उनके प्रेम पर आधारित होते थे, जिनके बारे में मैं आगे बतलाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के मूल अनुयायी राघव पंडित 7वीं शाखा कहे जाते हैं। उनसे एक अन्य उप शाखा निकली जिसमें मकर ध्वज कर्म मुख्य थे। राघव पंडित की बहिन दमयंती महाप्रभु की प्रिय सेविका थी। वह सदैव विभिन्न भोग सामग्री एकत्र करके महाप्रभु के लिए भोजन बनाती थी। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो उनके लिए दमयंती जो भोजन तैयार करती उसे उसका भाई राघव दूसरों की नजर से बचाकर एक थैली में ले जाया करता था। महाप्रभु 12 महीने यह भोजन स्वीकार करते। ये थैलियां अब भी राघवेर जाली अर्थात राघव पंडित की थैलियां के नाम से विख्यात हैं। मैं श्री राघव पंडित की थैली की सामग्री के बारे में इस ग्रंथ में आगे वर्णन करूंगा। इस वृत्तांत को सुनकर भक्तगण प्रायः रो उठते हैं और उनकी आंखों से अश्रु झरने लगते हैं। पंडित गंगादास श्री चैतन्य वृक्ष की 8वीं प्रिय शाखा थे। जो व्यक्ति उनके कार्यों का स्मरण करता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री आचार्य पुरंदर 9वीं शाखा थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। महाप्रभु उन्हें अपने पिता के रूप में मानते थे। चैतन्य वृक्ष की 10वीं शाखा दामोदर पंडित भगवान चैतन्य के प्रेम में इतना आगे बढ़े हुए थे कि एक बार उन्होंने महाप्रभु को बिना किसी झिझक के कड़े शब्द कहकर प्रताड़ित किया। इस दंड वृत्तांत का वर्णन मैं चैतन्य चरिता अमृत में आगे करूंगा। महाप्रभु इस दंड से इतने तुष्ट हुए कि उन्होंने दामोदर पंडित को नवद्वीप भेज दिया। दामोदर पंडित के छोटे भाई 11वीं शाखा थे, जिनका नाम शंकर पंडित था। उन्हें महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में माना जाता था। 12वीं शाखा सदाशिव पंडित सदैव महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। यह उनका अच्छा सौभाग्य था कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो वे उन्हीं के घर रुके। 13वीं शाखा प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे। चूंकि वे भगवान नरसिंह देव के उपासक थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कर दिया था। 14वीं शाखा नारायण पंडित थे, जो एक महान एवं उदार भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं जानते थे। 15वीं शाखा श्रीमान पंडित थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक थे। जब महाप्रभु नृत्य करते थे तब वे मशाल लिए रहते थे। 16वीं शाखा शुक्लांबर ब्रह्मचारी अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परिहास करते हुए या गंभीर होकर उनसे भोजन मांगते थे और कभी कभी उनसे बलपूर्वक छीन कर खा लेते थे। चैतन्य वृक्ष की 17वीं शाखा नंदन आचार्य जगत विदित हैं, क्योंकि दोनों प्रभु चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु कभी कभी उनके घर में छिप जाया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी श्री मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब वे गाते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे। श्री चैतन्य वृक्ष की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महापुरुष एवं महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्त थे। उनके गुणों का वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। श्रील वासुदेव दत्त ठाकुर चाहते थे कि सारे संसार के लोगों के पाप कर्मों का भोग वे ही करें, जिससे चैतन्य महाप्रभु उन लोगों का उद्धार कर सके। चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर थे। उनका चरित्र अद्भुत था। वे निर्बाध रूप से प्रतिदिन 3,00,000 बार कृष्ण नाम का जप करते थे। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का कोई अंत न था। यहाँ मैं उनके गुणों के मात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूँ। वे इतने महान थे कि अद्वैत गोस्वामी ने जब अपने पिता का श्राद्ध संस्कार किया तो उन्हें ही पहली थाली भेंट की। उनके उत्तम गुणों की तरंगे प्रहलाद महाराज के जैसी थी। जब मुसलमान शासक ने उन्हें दंड दिया तो उन्होंने अपनी भौह तक नहीं उठाई। हरिदास ठाकुर के दिवंगत होने पर स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को अपनी गोद में लेकर बड़े ही बाबा वेश में नाचने लगे थे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। जो कुछ शेष रह गया है उसे मैं इसी पुस्तक में आगे बतलाने का प्रयास करूंगा। श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे। इनमें से सत्यराज खान या सत्यराज बसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें हरिदास ठाकुर की पूरी पूरी कृपा प्राप्त थी। श्री चैतन्य वृक्ष की 21वीं शाखा मुरारी गुप्त भगवत प्रेम के भंडार थे। उनकी अत्यधिक दीनता तथा विनयशीलता से महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठता था। श्रील मुरारी गुप्त ने न तो कभी अपने मित्रों से कोई दान लिया, न ही किसी से कोई धन लिया। वे वैद्य का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जब मुरारी गुप्त अपने रोगियों का उपचार करते तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग कम हो जाते थे। श्री चैतन्य वृक्ष की 22वीं शाखा श्रीमान सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास सर्वोपरि समझे जाते थे, क्योंकि उन्होंने सारे मुसलमान काजियों को हरि नाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया था। वृक्ष की 24वीं शाखा चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक शिवानंद सेन थे। जो कोई महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाता वह श्री शिवानंद सेन के यहाँ आश्रय और मार्गदर्शन पाता। वे प्रति वर्ष भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। यात्रा पर जाते समय वे सारी टोली का खर्च वहन किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर तीन रूपों में अहेतुकी कृपा प्रदान करते हैं। अपने प्रत्यक्ष प्राकट्य साक्षात द्वारा किसी शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के भीतर अपने पराक्रम आवेश द्वारा तथा अपने आविर्भाव द्वारा। प्रत्येक भक्त की उपस्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना साक्षात कहलाता है। नकुल ब्रह्मचारी में विशेष शक्ति के लक्षण रूप में उनका प्राकट्य आवेश का उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी रख दिया। उसके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे। ऐसा प्राकट्य अलौकिक होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूपों से ऐसी अनेक लीलाएं प्रदर्शित की। श्री शिवानंद सेन को साक्षात आवेश तथा आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव था। इस दिव्य आनंद पूर्ण विषय का विस्तृत वर्णन मैं बाद में स्पष्ट रूप से करूंगा। शिवानंद सेन के पुत्र नौकर तथा परिवार के सदस्य एक उपशाखा हैं। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक थे। शिवानंद सेन के तीनों पुत्र चैतन्य दास, रामदास तथा कर्णपुर श्री चैतन्य महाप्रभु के शूर वीर भक्त थे। श्री वल्लभ सेन तथा श्री कांत सेन भी शिवानंद सेन की उपशाखाएं थे, क्योंकि ये न केवल उनके भांजे थे अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त भी थे। वृक्ष की 25वीं और 26वीं शाखाएं गोविंदानंद तथा गोविंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संग कीर्तन किया करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की टोली के प्रधान गायक थे। 27वीं शाखा श्री विजय दास महाप्रभु के अन्य प्रमुख गायक थे, जिन्होंने महाप्रभु को अनेक हस्तलिखित पुस्तकें भेंट की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विजय दास का नाम रत्न बाहु रख दिया, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए अनेक पांडुलिपियों की हस्तलिपियां उतारी थी। 28वीं शाखा कृष्ण दास थे, जो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। उनका नाम अकिंचन कृष्ण दास था। 29वीं शाखा श्रीधर थे, जो केले की छाल के व्यापारी थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। कई बार महाप्रभु ने उनके साथ परिहास किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु रोज मजाक में श्रीधर से फल फूल तथा गुदा छीन लिया करते थे और उनके टूटे हुए लोहे के पात्र से जल पीते थे। 30वीं शाखा भगवान पंडित थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे, किंतु पूर्व जन्म में भी वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और भगवान को सदैव अपने हृदय में रखते थे। 31वीं शाखा जगदीश पंडित थे और 32वीं शाखा हिरण्य महाशय थे, जिन पर महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के दिन इन दोनों के घरों से भोजन की भिक्षा मांगी और स्वयं इसे खाया। 33वीं तथा 34वीं शाखाएं पुरुषोत्तम तथा संजय नामक चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य थे, जो व्याकरण में सिद्ध हस्त थे। वे महापुरुष थे। वृक्ष की 35वीं शाखा वनमाली पंडित थे, जो इस जगत में अत्यंत विख्यात थे। उन्होंने महाप्रभु के हाथ में सोने की गदा मूसल तथा हल देखा। 36वीं शाखा बुद्धिमंत खान थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। वे महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। अतएव वे महाप्रभु के प्रधान सेवक माने जाते थे। वृक्ष की 37वीं शाखा गरुड़ पंडित सदैव भगवान का नाम कीर्तन करने में व्यस्त रहते थे। इस कीर्तन के बल पर उन्हें विष का प्रभाव छू तक नहीं पाता था। वृक्ष की 38वीं शाखा गोपीनाथ सिंह श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान दास थे। महाप्रभु मजाक में उन्हें अक्रूर कहकर पुकारते थे। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक थे, किंतु वक्रेश्वर पंडित तथा महाप्रभु की कृपा से वे भागवत की भक्तिमय व्याख्या समझ पाए। श्री खंडवासी मुकुंद तथा उनके पुत्र श्री रघुनंदन उस वृक्ष की 39वीं शाखा थे, नरहरि 40वीं, चिरंजीव 41वीं और सुलोचन 42वीं शाखा थे। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी कृपा दाम वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं थे। इन्होंने भगवत प्रेम रूपी फलों फूलों को सर्वत्र वितरित किया। सत्यराज, रामानंद, यदुनाथ, पुरुषोत्तम, शंकर तथा विद्यानंद ये सभी 20वीं शाखा से संबंधित थे। वे कुलीन ग्राम के निवासी थे। वाणीनाथ वसु की अगुवाई में कुलीन ग्राम के सारे निवासी चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे और चैतन्य महाप्रभु ही उनके एकमात्र प्राण तथा धन थे। महाप्रभु ने कहा, औरों की बात जाने दे, कुलीन ग्राम का कुत्ता भी मेरा प्रिय मित्र है। कुलीन ग्राम के सौभाग्य के विषय में कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता। वह इतना दिव्य है कि झाड़ू देने वाले भी सुअर चराते समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। वृक्ष के पश्चिम की ओर की 43वीं, 44वीं तथा 45वीं शाखाएं श्री सनातन, श्री रूप तथा अनुपम थे। ये सब में श्रेष्ठ थे। इन शाखाओं में रूप तथा सनातन प्रमुख थे। अनुपम, जीव गोस्वामी तथा राजेंद्र आदि उनकी उप शाखाएं थे। महान माली की इच्छा से श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की शाखाएं कई गुना बढ़कर समूचे पश्चिमी देशों में फैल गईं और उन्होंने सारे प्रदेश को आच्छादित कर दिया। ये दो शाखाएं सिंधु नदी तथा हिमालय पर्वत की घाटियों की सीमाओं तक बढ़कर सारे भारत में फैल गई, जिसमें वृंदावन, मथुरा तथा हरिद्वार जैसे सारे तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं। इन दोनों शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे वे बड़ी संख्या में वितरित किए गए। इन फलों को चख कर हर व्यक्ति उनके लिए उन्मत्त हो उठा। भारत के पश्चिमी भाग के लोग न तो बुद्धिमान थे न शिष्ट, किंतु श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के प्रभाव से वे भक्ति तथा सदाचार में प्रशिक्षित हो सके। प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार दोनों गोस्वामियों ने लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया और वृंदावन में अर्चा विग्रहों की पूजा का सूत्रपात किया। 46वीं शाखा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उन्होंने महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने और उनके चरणों में निवास करने के लिए अपनी सारी भौतिक संपत्ति का परित्याग कर दिया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया। इस तरह वे दोनों मिलकर महाप्रभु की गुह्य सेवा करने लगे। उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहकर 16 वर्षों तक महाप्रभु की गुह्य सेवा की और महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर दोनों के तिरोधान के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले गए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा हुई कि वे वृंदावन जाकर रूप तथा सनातन के चरण कमलों का दर्शन करें और फिर गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग दें। इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए और श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से मिले तथा उन्हें प्रणाम किया, किंतु इन दोनों भाइयों ने उन्हें मरने की अनुमति नहीं दी। इन्होंने उन्हें अपने तीसरे भाई के रूप में स्वीकार करके अपने साथ रख लिया। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के सहायक थे, अब एज वे महाप्रभु की लीलाओं के बाहरी तथा भीतरी तथ्यों से बहुत कुछ परिचित थे। इस तरह रूप तथा सनातन दोनों भाई उनसे इनके विषय में सुना करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने धीरे धीरे अन्न खाना त्याग दिया और वे मठे की कुछ बूंदे पीने लगे। वे नित्य प्रति भगवान को 1000 बार नमस्कार करते, भगवान के 1,00,000 नाम जपते और 2,000 वैष्णवों को प्रणाम करते। वे अपने मन में दिन रात राधा कृष्ण की सेवा करते और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में चर्चा करते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। जो ही उन्हें वृंदावन में रहने वाला कोई वैष्णव मिलता, वे उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते थे। वे दिन में 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो यह भी संभव नहीं हो पाता था। जब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करता हूँ। मैं इसका आगे विस्तृत वर्णन करूँगा कि ये सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से किस तरह मिले। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वृक्ष की 47वीं महान एवं श्रेष्ठ शाखा थे। वे रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भगवत प्रेम विषयक वार्ता में व्यस्त रहते थे। आचार्य शंकरारण्य मूल वृक्ष की 48वीं शाखा माने गए हैं। उनसे मुकुंद, काशीनाथ तथा रुद्र नामक उप शाखाएं फूटी। 49वीं शाखा श्रीनाथ पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र थे। तीनों लोक के सारे निवासी यह देखकर चकित थे कि वे भगवान कृष्ण की किस तरह सेवा करते हैं। चैतन्य वृक्ष की 50वीं शाखा जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय दास थे और महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने गंगा नदी के तट पर रहने का निश्चय किया। चैतन्य वृक्ष की 51वीं शाखा कृष्णदास वैद्य, 52वीं शाखा पंडित शेखर, 53वीं शाखा कवि चंद्र थे और 54वीं शाखा षष्ठीवर हुए जो बहुत बड़े संकीर्तनिया थे। श्रीनाथ मिश्र 55वीं शाखा थे, शुभानंद 56वीं, श्री राम 57वीं, ईशान 58वीं, श्री निधि 59वीं, श्री गोपीकांत 60वीं तथा मिश्र भगवान 61वीं शाखा थे। सुबुद्धि मिश्र 62वीं शाखा थे, हृदयानंद 63वीं, कमल नयन 64वीं, महेश पंडित 65वीं, श्रीकर 66वीं तथा श्री मधुसूदन 67वीं शाखा थे। मूल वृक्ष की 68वीं शाखा श्री पुरुषोत्तम थे, श्री गालिम 69वीं, जगन्नाथ दास 70वीं, श्री चंद्रशेखर वैद्य 71वीं और द्विज हरिदास 72वीं शाखा थे। मूल वृक्ष की 73वीं शाखा रामदास थे, 74वीं शाखा कवि चंद्र, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास, 76वीं शाखा भागवताचार्य और 77वीं शाखा ठाकुर सारंग दास थे। मूल वृक्ष की 78वीं शाखा जगन्नाथ तीर्थ थे, 79वीं शाखा जानकी नाथ ब्राह्मण, 80वीं शाखा गोपाल आचार्य तथा 81वीं शाखा वाणी नाथ ब्राह्मण थे। गोविंद माधव तथा वासुदेव नामक तीनों भाई वृक्ष की 82वीं 83वीं तथा 84वीं शाखाएं थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नृत्य करते थे। रामदास अभिराम सदैव सत्य भाव में मग्न रहते थे। उन्होंने 16 गांठ वाले बांस की बांसुरी बनाई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जब नित्यानंद प्रभु प्रचार हेतु बंगाल वापस गए तब उनके साथ साथ 3 भक्त भी गए। ये तीनों भक्त थे रामदास, माधव घोष तथा वासुदेव घोष, किंतु गोविंद घोष श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रह गए। इस तरह उन्हें परम संतोष हुआ। भागवताचार्य, चिरंजीव, श्री रघुनंदन, माधवाचार्य, कमलाकांत तथा श्री यदुनंदन ये सभी चैतन्य वृक्ष की शाखाओं में से थे। वृक्ष की 89वीं तथा 90वीं शाखाएं जगाई तथा माधाई श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक कृपा पात्र थे। ये दोनों भाई इसके साक्षी थे जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि महाप्रभु का पतित पावन पतितों के उद्धार करता नाम सार्थक है। मैंने महाप्रभु के बंगाल के भक्तों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। वास्तव में उनके भक्तों की संख्या अनगिनत है। मैंने इन सारे भक्तों का विशेष रूप से वर्णन इसीलिए किया है क्योंकि वे महाप्रभु के साथ साथ बंगाल तथा उड़ीसा में रहे और उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी सेवाएं की। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथ पुरी के कुछ भक्तों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। महाप्रभु के साथ साथ जो भक्त गण जगन्नाथ पुरी में रहे उनमें से दो परमानंद पुरी तथा स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हृदय और प्राण समान थे। अन्य भक्तों में गदाधर, जगदानंद, शंकर, वक्रेश्वर, दामोदर पंडित, ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास उल्लेखनीय हैं। ये सारे भक्त प्रारंभ से ही महाप्रभु के पार्षद थे और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो वे निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए वहीं रह गए। बंगाल में रहने वाले सारे भक्त महाप्रभु का दर्शन करने प्रति वर्ष जगन्नाथपुरी आया करते थे। अब मैं बंगाल के उन भक्तों के नाम गिनाऊंगा जो सबसे पहले महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए। महाप्रभु रूपी वृक्ष की सबसे बड़ी शाखाओं में से एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य। जगन्नाथपुरी के भक्तों की सूची में जो परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा गोपीनाथ आचार्य से प्रारंभ होती है, काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र तथा भवानंद राय के नाम पांचवें, छठे तथा सातवें स्थान पर थे। भगवान चैतन्य को इनसे मिलकर अति आनंद होता था। महाप्रभु ने भवानंद राय का आलिंगन करते हुए बतलाया, तुम पहले पांडु रूप में और तुम्हारे पांचों पुत्र पांचों पांडवों के रूप में प्रकट हुए थे। भवानंद राय के पांच पुत्र थे, रामानंद राय, पट्टनायक गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और नायक वाणीनाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय से कहा, तुम्हारे पांचों पुत्र मेरे प्रिय भक्त हैं, रामानंद राय और हम दोनों एक हैं, भले ही हमारे शरीर अलग हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तब उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र, उड़िया भक्त कृष्णानंद तथा शिवानंद, परमानंद महापात्र, भगवान आचार्य, ब्रह्मानंद भारती, श्री शिखी माहिती तथा मुरारी माहिती निरंतर उनका साथ देते थे। माधवी देवी प्रमुख भक्तों में सत्रहवीं थी और शिखी माहिती की छोटी बहन थी। उन्हें पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी की दासी के रूप में माना जाता है। ब्रह्मचारी काशीश्वर ईश्वरपुरी के शिष्य थे और उनके ही प्रिय शिष्यों में से दूसरे श्री गोविंद थे। नीलाचल जगन्नाथपुरी के प्रमुख भक्तों की सूची में काशीश्वर 18वें तथा गोविंद 19वें थे। ईश्वरपुरी के तिरोधान के समय दी गई आज्ञा के अनुसार वे दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आए थे। काशीश्वर तथा गोविंद दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे। अतएव जो ही वे दोनों वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने उनका यथोचित सत्कार किया। क्योंकि ईश्वरपुरी ने उन्हें आदेश दिया था कि वे चैतन्य महाप्रभु की निजी सेवा करें। अतएव महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की देखभाल करते और जब महाप्रभु मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते तो काशीश्वर महाप्रभु के आगे आगे चलते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाते तो काशीश्वर अत्यंत बलिष्ठ होने के कारण अपने हाथों से भीड़ को एक और करते, जिससे महाप्रभु किसी को स्पर्श किए बिना जा सके। रामाई तथा नंदाई जगन्नाथपुरी के महत्वपूर्ण भक्तों में 20वें तथा 21वें थे। महाप्रभु की सेवा करने में गोविंद की वे 24 घंटे सहायता करते थे। रामाई प्रतिदिन 22 बड़े जल पात्रों में पानी भरते थे और नंदाई स्वयं गोविंद की सहायता करते थे। 22वें भक्त कृष्णदास एक विशुद्ध तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने कृष्णदास को अपने साथ ले लिया था। बलभद्र भट्टाचार्य 23वें प्रमुख पार्षद थे जो प्रामाणिक भक्त थे और जिन्होंने महाप्रभु की मथुरा की यात्रा के समय उनके ब्रह्मचारी का कार्य किया था। नीलाचल में 24वें और 25वें भक्त बड़ हरिदास तथा छोट हरिदास अच्छे गायक थे जो सदैव महाप्रभु के साथ रहते थे। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले भक्तों में रामभद्राचार्य 26वें, उड़िया सिंहेश्वर 27वें, तपन आचार्य 28वें, रघुनाथ भट्टाचार्य 29वें तथा नीलांबर 30वें भक्त थे। सिंगा भट्ट, कामा भट्ट, शिवानंद तथा कमलानंद क्रमशः 31वें, 32वें, 33वें और 34वें भक्त थे। ये सभी पहले बंगाल में महाप्रभु की सेवा करते थे किंतु बाद में बंगाल छोड़कर महाप्रभु के साथ रहने जगन्नाथपुरी चले गए। 35वें भक्त अच्युतानंद थे जो अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। वे भी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में रहे। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवकों के रूप में रहने वाले भक्तों में निर्लोम गंगादास तथा विष्णुदास 36वें तथा 37वें भक्त थे। वाराणसी के प्रमुख भक्तों में वैद्य चंद्र शेखर, तपन मिश्र तथा तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य थे। जब भगवान चैतन्य वृंदावन से होकर वाराणसी आए तब वे 2 मास तक चंद्रशेखर वैद्य के घर रहे और तपन मिश्र के घर प्रसाद ग्रहण करते रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर ठहरे हुए थे तब रघुनाथ भट्ट जो उस समय बालक थे जूठे बर्तन मांजते थे और उनके पांव दबाते थे। जब रघुनाथ बड़े हो गए तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए और वहां 8 मास तक रहे। कभी कभी वे महाप्रभु को प्रसाद अर्पण करते थे। बाद में महाप्रभु की आज्ञा से रघुनाथ वृंदावन चले गए और वहां त्रिल रूप गोस्वामी की शरण में रहे। जब वे त्रिल रूप गोस्वामी के साथ ठहरे थे तो उनका एक ही काम था, श्रीमद् भागवत बांट कर उन्हें सुनाना। इसके फल स्वरूप उन्हें कृष्ण प्रेम की पूर्णता प्राप्त हुई, जिसके कारण वे सदैव उन्मत रहा करते थे। इस तरह मैं महाप्रभु के असंख्य भक्तों के एक अंश की ही सूची दे रहा हूँ। सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वृक्ष की प्रत्येक शाखा से शिष्यों तथा प्रशिष्यों की करोड़ों उपशाखाएं निकली हैं। वृक्ष की प्रत्येक शाखा तथा उपशाखा अनेक फलों और फूलों से परिपूर्ण है। वे कृष्ण प्रेम के जल से विश्व को आप्लावित करती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की प्रत्येक शाखा की अनंत आध्यात्मिक शक्ति और अनंत महिमा है। यदि किसी के हजार मुख भी हो तो भी उनके कार्यकलापों की सीमाओं का वर्णन कर पाना संभव नहीं होगा। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न स्थानों के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हजार मुखों वाले शेष भगवान भी उन सब की सूची नहीं बना सकते। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा रखते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत आदि लीला के 10वें अध्याय के अंतर्गत चैतन्य वृक्ष के मुख्य स्कंद की शाखाओं उपशाखाओं का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।